खलील गाड़ी में जा रहा था कि तभी रेहान का फोन आ गया। पता चला किस लिए ये लोग जहां आए हैं, रेहान ने पूछा। खलील ने जवाब दिया, हाँ मैं बाजार तक तो उनके पीछे था, लेकिन इकबाल अपनी लड़की को कहाँ छोड़ आया मुझे इसका पता नहीं चला। उसके बाद मैंने उसे बाजार में अकेला ही देखा, वो इकबाल की बात कर रहा था। अभी वो कहाँ है मुझसे मिस हो गई मुझे पता नहीं। रेहान कुछ पल सोच कर बोला, ठीक है तुम ऐसा करो, जाकर अरमान का ऑफिस चेक करो, तुम हमारे वेयरहाउस में काम करते हो, तुम्हें हर चीज का पता होगा। खलील ने कहा, ऑफिस तो मैं देख लूंगा, लेकिन उनके घर कौन आता जाता है इसका मुझे पता चल गया है। कौन आता जाता है, रेहान ने तुरंत पूछा। खलील बोला, मैं आपको तस्वीर भेज रहा हूँ, आप खुद देख लीजिए। थोड़ी ही देर में तस्वीर आ गई। तस्वीर में रेहान और फैजान दोनों थे, मगर फैजान की तस्वीर भेजी थी। वो तस्वीर गौर से देखने लगा। फैजान बस में चढ़ रहा था। तस्वीर देखते ही रेहान के चेहरे के भाव बदल गए। खलील ने बताया, जी साहब इसकी तो बड़ी खातिरदारी होती है, जाते वक्त इसे रास्ते के लिए खाना भी पैक करके दिया गया था। रेहान ने गंभीर आवाज में कहा, ठीक है तुम वापस सिद्धपुर जाओ और उनके लौटने का इंतजार करो, जो भी हो वापस वहीं आएंगे, और जहां तक फैजान की बात है उसे मैं खुद संभाल लूंगा। फिर उसने सख्ती से कहा, वहां कोई भी आए या जाए मुझे तुरंत खबर देना। जी सर, खलील ने जवाब दिया। फोन कटते ही रेहान गुस्से में बुदबुदाया, चीटी के भी पर निकल आए। वो फैजान की बात कर रहा था, वो अंदर ही अंदर जल रहा था। उसे तो उस घर से निकाल दिया गया था और फैजान की खातिरदारी की जा रही थी। उधर इकबाल और उसकी बेटी नूर यूनिवर्सिटी के एक कोने में बैठे थे। दोनों बेहद परेशान थे। नूर की अम्मी का कंगन खो चुकी था, उन्हें बेचकर जो पैसे मिलने थे वो भी अब नहीं मिल सकते थे। टैक्सी वाला उन्हें वहीं छोड़कर चला गया था। ऊपर से इकबाल का फोन भी टूट चुका था। जब खलील ने उसे धक्का दिया था तभी फोन गिरकर खराब हो गया था। इकबाल अपने टूटे फोन को जोड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी आंखें भर आई थीं। नूर ने धीरे से पूछा, आप रो रहे हैं? इकबाल की आवाज भर्रा गई, मैं तुम्हारी माँ को कभी कहने नहीं दिला पाया, और जो तुम्हारी नानी के दिए हुए कंगन थे वो भी खो गए। अब मैं तुम्हारी माँ को क्या जवाब दूंगा, मुझे बेहद अफसोस हो रहा है। कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, जब उन्हें पता चलेगा कि उनकी बेटी की इज्जत बचाते हुए वो कंगन नहीं रहे तो वो आपसे बिल्कुल नाराज नहीं होंगी, नूर ने धीमे मगर यकीन भरे लहजे में कहा। उन्हें अपनी बेटी की इज्जत हर चीज से प्यारी है। उस कंगन को बेचकर हम लोग होटल में रह सकते थे, अब कहाँ जाएंगे? इकबाल की आवाज में बेचैनी साफ थी। मैं यूनिवर्सिटी में ही रुक जाऊंगी, नूर ने फैसला सुनाया, मेरी एक सहेली है, आप तो कहीं भी रुक सकते हैं, कोई धर्मशाला देख लीजिए। इकबाल ने चिंतित होकर पूछा, अगर रेहान को पता चल गया तो? नूर ने नजरें झुका ली, लेकिन उसका फैसला नहीं बदला। आखिरकार उसने यूनिवर्सिटी में रुकने का फैसला कर लिया और इकबाल वहां से चला गया। उधर जैसे ही रेहान को पता चला कि फैजान सिद्धपुर गया है, उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। असल में वो मुस्कान नहीं, गुस्सा था जो उसे फैजान पर आया था। उसने तुरंत फैजान को फोन मिलाया। हेलो फैजान, रेहान की आवाज में तंज था। सिद्धपुर का मौसम कैसा है? फैजान समझ गया कि वो क्या कहना चाहता है, फिर भी उसने खुद को संभालते हुए जवाब दिया, आपके शहर से अलग है, काफी फर्क है। घर से तो तुम ऐसे गए थे जैसे कोई बहुत गैरत वाला काम कर रहे हो, रेहान हंसा, लेकिन तुम अच्छे इंसान भी नहीं हो। फैजान बहस नहीं करना चाहता था, उसने सीधा पूछा, आपको कोई काम था? तुम जैसा लूजर किसी के क्या काम आ सकता है, रेहान ने ताना मारा। फैजान ने शांत रहते हुए कहा, अगर सिर्फ ये बताने के लिए फोन किया है कि मैं कैसा हूँ तो मैं ठीक हूँ। रेहान की आवाज ठंडी हो गई, अगर भूखे मर रहे हो तो पैसे भेज दूं, लेकिन फिर कभी नूर के पास जाने की जरूरत नहीं है, वहां जाकर खाने की भीख मत मांगो। फैजान अब रुक नहीं पाया, आपको मेरे वहां जाने से प्रॉब्लम है या भीख मांगने से? रेहान हल्का सा हंसा, मुझे नहीं, लेकिन तुम्हारी बहन को हो सकती है। आप मुझे धमकी दे रहे हैं? फैजान की आवाज सख्त हो गई। धमकी नहीं, समझा रहा हूँ, रेहान बोला। जिस लड़की के पीछे तुम भाग रहे हो उसी ने पहले तुम्हारे बहनोई को फंसाने की कोशिश की थी, उस पर इल्जाम लगाए, बदनाम किया, बच के रहना, फैजान ने तुरंत जवाब दिया। आपने देखा था ये सब? आपको किसने कहा कि मैं वहां गया था? रेहान की आंखों में खतरनाक चमक आ गई। सबूत भेज रहा हूँ, और सुनो, अगर इस बार भी पीछे न हटे तो इसे मैं अपनी बेइज्जती समझूंगा। कुछ पल रुककर उसने धीमे लेकिन डरावने लहजे में कहा, और तुम जानते हो जो मेरी बेइज्जती करता है उसे मैं पाताल से भी ढूंढ निकालता हूँ, तुम तो अभी भी मेरी नजर के नीचे हो। रेहान से बात करने के बाद फैजान सच में परेशान हो गया था, लेकिन वो इतना भी कमजोर नहीं था कि बिना सोचे समझे किसी की बातों में आ जाए। कुछ ही देर में वो तस्वीर उसके पास पहुंच चुकी थी। फैजान बार बार उस तस्वीर को देख रहा था, वही तस्वीर जब वो बस में बैठ रहा था। उसकी नजरें तस्वीर पर टिकी थीं, लेकिन दिमाग कहीं और दौड़ रहा था। अचानक जैसे उसके दिमाग में कुछ क्लिक हुआ, मतलब कोई नूर पर नजर रख रहा है, उसने धीमे से कहा। वो समझ चुका था ये सब यूं ही नहीं हो रहा,
कोई बहुत चालाकी से खेल खेल रहा था। वो लोग हमें बेवकूफ समझ रहे हैं। फैजान की आंखों में अब डर नहीं बल्कि सतर्कता थी। उधर सादिया अकेले मार्केट से शॉपिंग करके वापस लौटी थी। जैसे ही वो कमरे में दाखिल हुई उसने देखा रेहान सामान पैक कर रहा था। आप ये क्या कर रहे हैं? सादिया ने हैरानी से पूछा। हम इंडिया जा रहे हैं, तुम भी अपनी पैकिंग कर लो, रेहान ने बिना उसकी तरफ देखे कहा। सादिया चौंक गई। लेकिन हमारी फ्लाइट तो 15 दिन बाद की थी, रेहान ने ठंडे अंदाज में जवाब दिया। तो तुम 15 दिन बाद आ जाना। उसका ये लहजा सादिया को चुप गया। ये क्या तरीका है बात करने का? अब उसके अंदर भी गुस्सा जाग चुका था। रेहान ने उसकी तरफ देखा, नजरों में सख्ती साफ थी। अभी तो मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ तुमसे, उसने धीमे मगर दबाव भरे लहजे में कहा। सादिया ने फोन उठाया। मैं अभी ताया अबू को फोन करती हूँ, जा कर लो, रेहान ने बीच में ही रोकते हुए कहा। और शुक्र करो कि अभी तक मैंने कुछ कहा नहीं। वो थोड़ा पास आया, उसकी आवाज और ठंडी हो गई। वरना तुम्हारी वजह से जो मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ ना, उसके बाद तो वो बात अधूरी छोड़ गया। अब सादिया का गुस्सा डर में बदल चुका था। उसकी उंगलियां कांप रही थीं। उसे अभी तक समझ नहीं आया था कि ये क्या हो गया है। असल में ना ताया अबू अब उसका रहा था, ना वो शौहर, और शायद ना ही उसकी जिंदगी पर उसका कोई कंट्रोल बचा था। सादिया रेहान के बदले हुए रूप को चुपचाप देख रही थी। उसकी आंखों में अब वो इंसान नहीं था जिसे वो जानती थी। कुछ था ठंडा, खामोश और खतरनाक। लेकिन उस रात रिदा और अरमान की सगाई थी। पूरा गेस्ट हाउस रोशनी से नहाया हुआ था। हर कोना झिलमिल लाइट्स, ताजे फूलों और सुनहरी सजावट से सजा हुआ था। हवा में खुशबू थी रजनीगंधा और गुलाब की, और माहौल में एक शाही सा नूर। मगर रेहाना बेगम, उसके दिल दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। वो एक साइड पर खड़ी हुई थी। मेहमान धीरे धीरे आ रहे थे। गेस्ट हाउस रोशनी और शोर शराबे से भरा हुआ था। हर तरफ मेहमानों की चहल पहल थी। स्टेज पर जुबैदा बेगम अपने बेटे अरमान और बेटी माहिरा के साथ खड़ी थी। तभी सीढ़ियों से रिदा ऊपर आ रही थी। उसका पैर हल्का सा फिसला तो माहिरा तुरंत आगे बढ़ी और उसका हाथ थाम लिया। संभल कर, माहिरा ने मुस्कुराते हुए कहा और उसे स्टेज तक ले आई। भीड़ से थोड़ा हटकर फरीद खान अपनी बेगम रेहाना के पास पहुंचा। तुम यहाँ क्या कर रही हो? उसने धीमे लेकिन गंभीर लहजे में पूछा। रेहाना ने हल्की सी नजर घुमाई और बोली,